43 अध्याय 49।
पिछले सप्ताह हमने उत्पत्ति 48 में बताए गए याकूब के क्रॉस हैंडेड आशीर्वाद की जांच पूरी की। यह एप्रैम और मनश्शे पर किया गया एक भविष्यवाणी पूर्ण आशीर्वाद था, लेकिन इस आशीर्वाद का प्राथमिक लक्ष्य एप्रैम था। हमने पाया कि एप्रैम किसी तरह से अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, गैर यहूदी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद होगा। और जैसा कि हमने एक बार फिर यहेजकेल 37 को देखा, हमने सीखा कि क्यों यह भविष्यवाणी कि एप्रैम और यहूदा इज़राइल की भूमि में फिर से एक हो जाएंगे, कभी नहीं हटाए जाएंगे, का हमारे समय में आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं उससे सब कुछ लेना देना था। इस सप्ताह हम याकूब द्वारा दी गई आशीषों के एक और अलग समूह पर नजर डालने जा रहे हैं। याद करें कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब इज़राइल के 12 गोत्र मिस्र में थे। यूसुफ मिस्र का वजीर था और इज़राइल फिरौन के सम्मानित अतिथि थे। तो यह संभवतः 1700 से 1540 ईसा पूर्व के आसपास की बात है जब उत्पत्ति 48 और 49 की घटनाएं घटित हुई। उत्पत्ति 49 में हम आशीर्वाद के रूप में वर्णित नियति को देखने जा रहे हैं, जिसे इज़राइल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक के लिए भविष्यवाणी के रूप में कहा गया था। हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, है ना? उत्पत्ति के पहले के भागों में हमने देखा कि परमेश्वर ने याकूब को एक नाम प्रत्यारोपण इज़राइल देकर इज़राइल का निर्माण किया, और अब हम इज़राइल के अलग अलग गोत्रों के भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां देखेंगे जो उनकी पूर्ति से सैकड़ों साल पहले बताई गई थी। हम उनके बारे में जो कुछ भी सीखेंगे वह पहले से ही पूरी हो चुकी भविष्यवाणी है। हम इससे जो सीख सकते हैं वह है बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ण अचूकता और शाब्दिक प्रकृति, और यह हमारे समय में हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इज़राइल के गोत्रों के बारे में अभी भी कई भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होने की प्रक्रिया में हैं और अन्य जो जल्द ही पूरी होंगी। सच है इनमें से कुछ भविष्यवाणियां थोड़ी अस्पष्ट है और उनका अर्थ धुंधला है, लेकिन पर्दा उठना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि हम इन गोत्र के बारे में क्या अध्ययन करेंगे, तो विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आपके लिए नया अर्थ रखेगी। उदाहरण के लिए पिछले सप्ताह याद करें, हमने पाया कि प्रकाशित वाक्य 7 में इसराइल के 12 गोत्र की संरचना तोरह की तुलना में अलग दिखती है, जिसमें एप्रैम और दान को हटा दिया गया है और यूसुफ और लेवी को वापस जोड़ दिया गया है। अब जैसा कि हम उत्पत्ति 49 को पढ़ते हैं, हमें इसे उचित परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। याकूब जो कह रहा था वह इन गोत्र में से प्रत्येक की समग्र तस्वीर थी। ये उन चीजों के बारे में भविष्यवाणियां नहीं थीं जो वे अनिवार्य रूप से करेंगे, ये भविष्यवाणियां थीं कि इनमें से प्रत्येक गोत्र क्या बनेगी। याकूब घोषणा करेगा कि इन गोत्र में से प्रत्येक की विशेषताएं और गुण लंबे समय तक क्या होंगे। ये ठीक से नहीं बताया गया कि वे किसी निश्चित समय पर कैसे व्यवहार करेंगे, हालांकि हम ऐसे क्षण देख सकते हैं जब एक निश्चित गोत्र ने याकूब द्वारा दिए गए आशीर्वाद को भयावह रूप से प्रतिबिंबित किया। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह 3500 साल से भी पहले की बात है जब याकूब ने ये घोषणाएं की थीं कि उसकी मृत्युशैया के आसपास एकत्र हुए बेटों के वंशजों के लक्षण कैसे दिखेंगे। अगर कोई प्रत्येक गोत्र के इतिहास को शुरू से अंत तक देख सकता है, और याद रखें अब से जब बाइबल 12 इसराइली गोत्र में से किसी एक के बारे में बात करती है, जैसे रूबेन या यहूदा या एप्रैम, तो वह किसी विशेष व्यक्ति के भाग्य के बारे में बात नहीं कर रही है, क्योंकि ये लोग याकूब के ये 12 बेटे बहुत पहले ही मर चुके थे। अलग अलग गोत्रियाओं जो अपने नाम से जानी जाती थीं, इतनी बड़ी हो गई कि उनकी पहचान करने योग्य विशेषताएं भी बन गई, बल्कि बाइबल इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के हजारों और लाखों वंशजों की बात कर रही है जो एक साथ परिवार समूहों में रहते थे, जिन्हें गोत्रियां कहा जाता था। यह उस समय की विशिष्ट सामाजिक संरचना थी, और आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आज दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी आदिवासी है। इसलिए कबीलाई अतीत की बात नहीं है, यह जीवित है और अच्छी तरह से काम करता है। और यह कैसे काम करता है, इसका मध्य पूर्व में हमारे सामने आने वाली असाध्य समस्याओं के साथ साथ आधुनिक अफ्रीका के भयानक नरसंहारों से भी लेना देना है। उत्पत्ति 49 पूरा प्रहें। आधुनिक समय के परिवार की तरह एक मेज के चारों ओर बैठे हुए जब एक निष्पादक दिवंगत व्यक्ति की वसीयत पढ़ता है, जिसने परिवार की सारी संपत्ति और शक्ति पर कब्जा कर रखा था, 12 भाइयों के बीच प्रत्याशा का माहौल था। याकूब के 12 बेटे उत्सुकता से यह सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि उनका विशेष आशीर्वाद क्या हो सकता है। और वसीयत पढ़ते समय परिवार की तरह कुछ लोग अपने हिस्से पर सुखद आश्चर्य करने वाले थे, जबकि अन्य निराशा से थक गए थे, और फिर भी कुछ लोग संतुष्ट होकर चले गए, चाहे उनका भाग्य कितना भी छोटा क्यों ना हो। बाद में जब यह सब समझ में आ गया तो कठोर भावनाएं भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि याकूब के कुछ बेटे जिन्हें कम आशीर्वाद मिला था, वे उन लोगों के प्रति ईर्ष्या से जलते थे जिन्हें अधिक आशीर्वाद मिला था। बेशक जिन लोगों को सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला था, वे उन लोगों को नीची नजर से देखते थे जो कभी भी उतने के हकदार नहीं थे जितने उन्हें मिले थे, और समय इन दुखों और अस्वीकृतियों को जरूरी नहीं सुलझाता। कभी कभी यह वास्तव में दुश्मनी को बढ़ा सकता है। ऐसा ही मामला तब होगा जब हम इस बिंदु से आगे इसराइल के इतिहास का अनुसरण करेंगे, क्योंकि हम पाएंगे कि इसराइल के कुछ गोत्रों में इसराइल के अन्य गोत्रों के प्रति लंबे समय तक नफरत रहेगी, और कई बार वे वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करेंगे। अंतिम कुलपिता याकूब के 12 पुत्र, जिन्हें इसराइल कहा जाता है, अपने पिता के चारों ओर एकत्रित हुए, जिनके वृद्ध शरीर में पृथ्वी पर अपना अंतिम कर्तव्य निभाने के लिए बस इतनी ही शक्ति शेष थी। और वे ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि सभी महत्वपूर्ण आशीषें, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, ज्येष्ठ पुत्र रूबेन से आरंभ होती हैं, तथा उनके जन्म के क्रम के अनुसार लगभग, किंतु सटीक नहीं, आगे बढ़ती है। पद 1 में याकूब कुछ ऐसा कहकर शुरू करता है जिसका अर्थ आज भी विद्वानों के लिए अस्पष्ट है। वह कहता है, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ क्या घटित होगा। कुछ संस्करण कहते हैं बाद के दिनों में, और फिर भी अन्य कहते हैं अंतिम दिनों में। अब यहां इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द है अचरित हा यामीम। अपने सबसे शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ है दिनों के अंत में। कुछ रब्बी और विद्वान कहते हैं कि यह उस समय की बात करता है जब मिस्र में इसराइल के दिन खत्म हो जाएंगे और मूसा उन्हें बाहर ले जाएगा। दूसरे कहते हैं कि यह दुनिया के अंतिम दिनों और अंतिम समय की बात कर रहा है, जैसा कि हम इसे कहने के लिए बहुत इच्छुक हैं। दोनों पक्षों के लिए बहुत ही उचित तर्क दिए गए हैं। संभवतः याकूब के बेटे हजारों साल के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन जैसा कि बाइबल में ईश्वर के बारे में हर घोषणा के साथ होता है, जैसा कि ये आशीर्वाद थे, हमें इस बात से अवगत रहना चाहिए कि एक साथ एक भौतिक और एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। निश्चित रूप से याकूब के बेटे केवल भौतिक पक्ष देख सकते थे, लेकिन हम पीछे मुड़कर देखने पर आध्यात्मिक भी देख सकते हैं। इस आशीर्वाद के लगभग 1000 साल बाद 12 गोत्र में से 10, यहूदा और बिन्यामीन और विशेष श्रेणी की गोत्र लेवीय को छोड़कर सभी गायब हो जाएंगे। इसलिए किसी को यह सोचना होगा कि वास्तव में याकूब के शब्दों का अर्थ दिनों का अंत, उनके गायब होने से पहले के समय की बात करता है। एक ऐसा समय जो मिस्र से उनके पलायन तक के वर्षों में प्रत्येक गोत्र की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह याकूब के शब्दों के विपरीत है जो दुनिया के अंतिम समय का उल्लेख करते हैं। फिर भी जैसा कि हम अभी अचानक जानते हैं कि एप्रैम, जो उन सभी वर्तमान में खोई हुई गोत्र का प्रतिनिधित्व करता है, को अंतिम समय में किसी न किसी रूप में रहस्यमय तरीके से फिर से प्रकट होना चाहिए, यह संभावना को खुला छोड़ देता है कि वास्तव में याकूब का मतलब दुनिया के अंत समय से था, न कि केवल मिस्र में इसराइल के समय के अंत से। बेशक इसका मतलब दोनों हो सकता है, समय बताएगा। संभवतः इसमें अतीत और भविष्य दोनों के कुछ तत्व हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बाइबल की भविष्यवाणियां खुद को दोहराती हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां भविष्य की घटनाओं के बारे में जितना पूर्वानुमान लगाती हैं उतनी ही पैटर्न भी बनाती हैं। फिलहाल मैं इसे अज्ञात के रूप में छोड़ना पसंद करता हूं, बजाय इसके कि हठधर्मिता से कहूं कि इसका मतलब एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज है। शायद अगले कुछ महीनों और सालों में परमेश्वर इसे हमारे लिए और अधिक स्पष्ट कर देगा।
इसके साथ ही आइए प्रत्येक बेटे को दी गई आशीष की जांच करें।
पुनः पढ़ें उत्पत्ति 49:3-4। हालांकि हमें किसी भी बेटे की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन रूबेन को जो करारा झटका लगा होगा उसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस पल अपने भाइयों के सामने अपमानित होकर उसे इज़राइल के प्राकृतिक ज्येष्ठ पुत्र के पद से हटा दिया गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि उसे इस तरह के परिणाम की आशंका होनी चाहिए थी, खासकर तब जब पिछले कुछ सालों में याकूब ने अपने छोटे भाई यहूदा पर नेतृत्व के लिए अधिक से अधिक भरोसा किया था। रूबेन को पता था कि उसने अपने पिता के खिलाफ क्या गलत किया है, लेकिन इस सब की अपरिवर्तनीय अंतिमता से आहत एक क्रूर रूप से उदास रूबेन को इसका परिणाम होना ही था।
याकूब रूबेन के बारे में कहता है, तू पानी की तरह अस्थिर है, तू श्रेष्ठता नहीं पाएगा क्योंकि तूने मेरे बिस्तर को अपवित्र किया है। दूसरे शब्दों में, तेरे पास इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक गुण नहीं है, इसलिए तुझे ज्येष्ठ पुत्र का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यह बिस्तर अपवित्र करने की घटना इतिहास में हमारे लिए याद की जाती है। कृपया इस शास्त्र को पढ़ें। हमें इसमें जो लिखा है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह उन आशीषों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जो याकूब अपने बेटों को देगा और भी बहुत कुछ। एक इतिहास 5:1-2, इज़राइल के जेठे रूबेन के पुत्र, वह जेठा तो था परंतु क्योंकि उसने अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया था, इस कारण उसका पहलौठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया, तो भी इस रीति से नहीं कि वह वंशावली में जेठा गिना जाए, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों से बड़ा हो गया, क्योंकि राजा उसी का था, तो भी पहलौठे का अधिकार यूसुफ को मिला। अब खलिहान के चारों ओर एक लंबे रास्ते में यह आयत हमें दो बातें बताती है। सबसे पहले, याकूब ने रूबेन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने याकूब की रखेल बिल्हा के साथ सोया था। यह काफी सीधा है, लेकिन यह भी हुआ कि संक्षेप में जो सम्मान और आशीर्वाद पारंपरिक रूप से ज्येष्ठ पुत्र को मिलते थे, वे दो अन्य पुत्रों यूसुफ और यहूदा के बीच विभाजित हो गए।
या जैसा कि हमने उत्पत्ति 48 में देखा, वास्तव में जेठे के अधिकार एप्रैम यूसुफ के बेटे और यहूदा के बीच विभाजित हो गए थे। इसलिए इतिहासकार हमें बताता है कि यूसुफ के बेटों पर याकूब के क्रॉस 100 आशीर्वाद के पीछे सांसारिक कारण रूबेन को उसके की वजह से बेदखल करना था। बेशक परमेश्वर के पास इस परिदृश्य को प्रकट होने देने के लिए अन्य कारण थे। पारंपरिक ज्येष्ठ पुत्र के आशीर्वाद में दो मुख्य घटक शामिल हैं। पहला, दोहरा हिस्सा, जिसका मतलब था कि ज्येष्ठ पुत्र को कबीले की संपत्ति का एक हिस्सा या उससे ज्यादा मिलना था। दूसरा, ज्येष्ठ पुत्र को पूरे कबीले का नेतृत्व करने, उस पर शासन करने का अधिकार दिया गया था। अगर सब कुछ सामान्य रहा होता तो रूबेन न सिर्फ उस कबीले का नेता होता जिसे उसके अपने जन्म ने बनाया था, रूबेन का कबीला, बल्कि वह पूरे इज़राइल का नेता बन जाता। वह अपने पिता याकूब की जगह पर पूरे 12 कबीलों पर शासन करता और उसे दोगुना हिस्सा मिलता, कबीले की संपत्ति का दोगुना हिस्सा जितना उसके किसी भी भाई को मिला। रूबेन को इसमें से कुछ भी नहीं मिला। इसके बजाय हम देखते हैं कि यूसुफ को दोगुना हिस्सा अपने बेटों एप्रैम और मनश्शे के जरिए मिला और यहूदा को शासन करने और नेतृत्व करने का अधिकार मिला। अब मैं आपको बताता हूं, ज्येष्ठ पुत्र के आशीर्वाद को बांटने में याकूब ने जो अजीब काम किया वह बहुत अजीब था, लेकिन इतिहास के लेखक द्वारा बताए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व को भी ध्यान में रखें और वंशावली के अनुसार
यहूदा का परिवार ही अधिकार को आगे ले जाएगा। इसलिए इसराइल के मामलों में जहां वंशावली निर्णायक कारक थी, जैसे कि इसराइल का पहला वैध राजा कौन होगा, दाऊद, और कौन हमेशा के लिए राजा होगा, यीशु, यह यहूदा के वंश का उपयोग किया जाएगा, न कि यूसुफ का और न ही रूबेन का। फिर भी एक अजीब तरीके से यूसुफ को भी ज्येष्ठ पुत्र का आशीर्वाद मिला। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे हुआ। बात यह है, अक्सर हम बाइबल में दो गुना भाग आशीर्वाद और जन्म सिद्ध अधिकार और पहला जन्म आशीर्वाद शब्दों का परस्पर उपयोग करते हुए देखेंगे, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि भले ही उस दिन की आम बोलचाल की भाषा में दोहरा भाग शब्द का इस्तेमाल पहलौठे के आशीर्वाद के समानार्थक रूप में किया जाता था, लेकिन तकनीकी रूप से दोहरा भाग केवल पहलौठे के आशीर्वाद का एक हिस्सा था। परंपरा के अनुसार ये माना जाता था कि जिसे भी पहलौठे का आशीर्वाद दिया जाता था, उसे पारंपरिक रूप से उसके साथ जाने वाले सभी तत्व मिलते थे। यानी जिसने भी परिवार की संपत्ति का दोहरा हिस्सा प्राप्त किया, उसे अपने आप कबीले पर शासन करने का अधिकार भी मिल गया। लेकिन याकूब ने दो उत्तराधिकारियों, दो बेटों, इसराइल के दो कबीलों के बीच पहलौठे के आशीर्वाद को विभाजित करके कुछ बहुत ही अनोखा काम किया। मेरी राय में इतिहास के लेखक ने इन आयतों को जिस तरह से लिखा है, उसका कारण यह है कि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है और यह सब क्या परिणाम देगा। ज्येष्ठ पुत्र का आशीर्वाद दो बेटों के बीच क्यों बांटा गया, यह लेखक को स्पष्ट रूप से नहीं पता है, क्योंकि आम तौर पर ऐसा नहीं किया जाता था। वास्तव में मुझे बाइबल में कहीं और भी ऐसा नहीं पता है कि ज्येष्ठ पुत्र के आशीर्वाद का बंटवारा, जैसा कि याकूब ने किया था, फिर कभी हुआ हो। यह घटना पूरी तरह से अनोखी लगती है। इसलिए इतिहास के लेखक ने केवल तथ्यों को, जैसा कि वह उन्हें समझता है, बिना किसी और स्पष्टीकरण के जोर देकर कहा है। अब आइए देखें कि रूबेन के लिए याकूब की आशीष कैसे पूरी हुई। भविष्यवाणी यह थी कि रूबेन के वंशज पानी की तरह अस्थिर होंगे और वे नेता नहीं होंगे। जब हम धर्म ग्रंथों में खोज करेंगे तो पाएंगे कि रूबेन गोत्र ने एक भी सैन्य नेता, राजा, पैगंबर या न्यायाधीश पैदा नहीं किया। बाइबल में रूबेन के वंशजों में से किसी का भी उल्लेख नहीं है जिसने विशेष मूल्य या सम्मान का पद प्राप्त किया हो या कुछ भी महत्व का हासिल किया हो। हम यह भी पाते हैं कि मूसा के नेतृत्व में 12 गोत्र के कनान के वादा किए गए देश के पास पहुंचने के बाद रूबेन गोत्र ने वादा किए गए देश में प्रवेश न करने का फैसला किया, बल्कि पर्याप्त रूप से अच्छा से संतुष्ट होने का फैसला किया। उन्होंने कनान की भूमि के बाहर जॉर्डन नदी के पूर्वी किनारे पर अपनी विरासत के रूप में कुछ क्षेत्र लिया। हम यहां तक पाते हैं कि रूबेन गोत्र की जनसंख्या में लगातार गिरावट आने लगी। मूसा रूबेन गोत्र की स्थिति के बारे में इतना चिंतित था कि उसने प्रार्थना की, व्यवस्था विवरण 33:6, रूबेन जीवित रहे न मरे और उसके लोग कम न हो। रूबेन के अस्थिर तरीकों और उसके पाप के कारण रूबेन की गोत्र को इसराइल के इतिहास में एक सितारा बनने के लिए नियत किया गया था। ये एक सरल फिर भी गहरा बाइबल सिद्धांत है कि जबकि हमारे पापों को निश्चित रूप से क्षमा किया जाता है और उनके लिए भुगतान किया जाता है, हमारे पापों के परिणाम हमारे जीवन काल में और हमारे बच्चों ने हमारे बच्चों के बच्चों और उसके बाद के जीवन में भी बने रह सकते हैं। हमें ये पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा है। हमारे पापी तरीके हमारे परिवारों में ऐसी विशेषताओं को पेश कर सकते हैं जो हानिकारक हैं और उनके प्रभाव लंबे समय तक चलते हैं, और हमें बस इतना करना है कि उस कथन की सच्चाई जानने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहें। इसके बाद हम शिमोन और लेवी के दो गोत्रों पर घोषित की गई भविष्य सूचक आशीषों के बारे में पढ़ते हैं। पुनः पढ़ें उत्पत्ति 49:5-7 तक। एक और कठोर फैसला और निस्संदेह दो और स्तब्ध उत्तराधिकारी याकूब अपने दूसरे और तीसरे जन्मे बेटों को एक ही नजरिए से देखता है, समान व्यक्तिगत विशेषताओं और विशेषताओं के साथ। इसलिए जाहिर है, और मैं स्पष्ट रूप से शब्द को रेखांकित करता हूं, एक ही नियति साझा करते हैं। वे हिंसा में भाई हैं और इसलिए
वे अपने अपराधों में भी भाई होंगे। रूबेन के प्राथमिक अपराध के विपरीत जो गुप्त रूप से किया गया था, शिमोन और लेवी ने अपना सबसे बड़ा अपराध सबके सामने किया था, और इसके अलावा उन्होंने जो किया था उस पर उन्हें गर्व और पश्चाताप भी नहीं था। आइए हम पुनः देखें कि शिमोन और लेवी का बड़ा अपराध क्या था। जैसा कि उत्पत्ति 34 में बताया गया है, उत्पत्ति 34 का 1-2, 5-7, 13-15, 25-27 पढ़े। इस आशीर्वाद का प्राथमिक जोर यह था कि न तो शिमोन और न ही लेवी अपने भाइयों के समान ही वादा किए गए देश में हिस्सा लेंगे। ये उनके रक्तपात और क्रूरता के परिणाम स्वरूप हुआ, जैसा कि शेखेम के नागरिकों पर प्रदर्शित किया गया था। इसके बजाय वे विभाजित और बिखरे हुए होंगे, और ठीक यही हुआ। लेकिन शिमोन और लेवी के साथ जो हुआ उस पर हमारे विचार से पहले मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं। याद रखें कि परमेश्वर की शासी गतिशीलता में से एक विभाजित करना है। विभाजित करना, अलग करना और चुनना, यह एक धोखा खाने वाली मानव जाति है जो विभाजन को एक स्वचालित नकारात्मक के रूप में देखती है। आइए सबसे पहले शिमोन पर नजर डालें, जो गिनती 26 की जनगणना के समय तक सबसे छोटी गोत्र बन गई थी, और रूबेन की तरह अस्तित्व में बने रहने और एक अलग गोत्र पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। गिनती की किताब के शुरुआती हिस्से में दर्ज की गई जनगणना में शिमोन कहा जाता है कि उस समय उनकी जनसंख्या 59,300 थी, लेकिन मात्र 40 वर्षों के भीतर संख्या 26 की जनगणना से पता चलता है कि उनकी जनसंख्या 50% से अधिक घटकर 22,200 रह गई है। अब स्पष्टता के लिए, जनगणना केवल पुरुषों की ही रही होगी और केवल अपने जीवन के सबसे अच्छे और मध्य भाग में रहने वाले पुरुषों की। इसे अक्सर इब्रानी मुहावरे में हथियार उठाने में सक्षम पुरुष के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यह संभवतः 20 से 50 वर्ष की आयु के क्रम का कुछ है। इससे कम और इससे अधिक उम्र के पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग गिने नहीं गए, न ही किसी भी उम्र या स्थिति की महिलाओं को गिना गया। इसके अलावा जब हम पाते हैं कि मूसा गोत्र की भूमि विरासत को सौंपने का काम कर रहा है, तो शिमोन को यहूदा के क्षेत्र के भीतर का क्षेत्र दिया गया है। तकनीकी रूप से और अधिक सटीक रूप से यहूदा के क्षेत्र के भीतर कुछ शहर। शिमोन का क्षेत्र एक लक्ष्य के केंद्र में घोल बैल की आंख की तरह था। वे पूरी तरह से यहूदा के गोत्र से घिरे हुए थे। इससे भी बदतर, यहूदा के भीतर जिस क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया वह मुख्य रूप से नेगेव था, एक शुष्क रेगिस्तान। शिमोन संभवतः वह पहली गोत्र थी जिसे अन्य गोत्र ने पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया था। उनमें से कुछ यहूदा के साथ मिल गए और अन्य उन गोत्र में शामिल हो गए जिन्हें अंततः एप्रैम की 10 उत्तरी गोत्र के रूप में जाना जाने लगा। प्रथम इतिहास में शिमोन गोत्र के कुछ सदस्यों के पवित्र भूमि को पूरी तरह से छोड़ने और एदोम के साथ झुरने का भी उल्लेख है। याद करें कि एदोम याकूब के जुड़वां भाई एसाव के वंशज थे। याकूब ने कहा कि वे बिखर जाएंगे, यह कितना सच साबित हुआ।
लेवी को भी भूमि और क्षेत्र के मामले में इसी तरह का, हालांकि विनाशकारी नहीं, भाग्य का सामना करना पड़ा। लेवी को शिमोन की तरह अपना क्षेत्र नहीं दिया गया, बल्कि उसे भी शहर दिए गए, 48 शहर, लेकिन हर गोत्र की जनजातीय सीमाओं के भीतर। हालांकि लेवी को विभाजित किया गया और अलग किया गया ताकि वे ईश्वर के अपने पुजारी बन सकें, इब्रानी में ईश्वर के कोहनिम। ये लेवी ही थे जो जंगल के तंबू और फिर मंदिर में सभी मामलों का संचालन करते थे। इसलिए जबकि शिमोन को अपनी जनजातीय पहचान खोने और लगभग विलुप्त होने के लिए नियत किया गया था, लेवी का इसराइल से अलग होना एक पवित्र मामला बन गया।
यह कितनी अविश्वसनीय बात है कि याकूब की भविष्यवाणी इतनी सटीक रूप से शिमोन और लेवी के समान फिर भी विपरीत भाग्य को दर्शाती है। एक बार फिर पद 7 को देखें, इसके अंत में जहां लिखा है, मैं उन्हें याकूब में विभाजित करूंगा और उन्हें इसराइल में बिखेर दूंगा। दोनों कार्य हुए, लेकिन प्रत्येक अपने तरीके से। लेवी को विभाजित किया गया, अलग किया गया और परमेश्वर के पुजारी बनने के लिए अन्य गोत्र से अलग चुना गया, और शिमोन पूरी तरह से इसराइल के अन्य सभी गोत्र में बिखर गया। लेवी ने अपनी पहचान बनाए रखी और शिमोन ने अपनी पहचान खो दी।
अक्सर हम पवित्र शास्त्र में दो वाक्यांश या वाक्य एक के बाद एक देखेंगे जो केवल दोहराव प्रतीत होते हैं, जैसे कि पद 7 में, मैं विभाजित करूंगा, मैं फैला दूंगा। आमतौर पर यह सिर्फ एक मानक इब्रानी साहित्यिक उपकरण है जिसे डबलट या दोहा कहा जाता है। हालांकि अन्य समय में एक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण संदेश पेश किया जा रहा है, और यह एक ही बात नहीं है, बस दो अलग अलग तरीकों से कहा जा रहा है।
मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खास तौर पर पैगंबरों में यह निर्विवाद लगता है कि बहुत दोहराव है। वास्तव में यह इब्रानी शब्द संरचना का अंग्रेजी में अनुवाद करना लगभग असंभव है, और ऐसा होने का एक कारण यह है कि बाइबल मूल रूप से एक ऐसी संरचना में बनाई गई थी जिसका उद्देश्य बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से सीखना था,
और सुनने के माध्यम से यह हमारी अंग्रेजी के विपरीत है। लैटिन, फ्रेंच और जर्मन अनुवाद जो पढ़ने के द्वारा अवशोषित करने के लिए बनाई गई शैली में लिखे गए थे, जबकि हम में से जो साहित्यिक पेशेवर नहीं हैं, उनके लिए कानों द्वारा अवशोषित किए जाने के लिए डिजाइन किए गए भाषण को बनाने और आंखों द्वारा अवशोषित किए जाने के लिए डिजाइन की गई पांडुलिपि बनाने के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं लग सकता है। अंतर पर्याप्त है।
यह देखना दिलचस्प है कि हमारे समय तक भी लेवियों को बाकी इसराइल से अलग माना जाता है। यहूदी लेवियों को यहूदी नहीं मानते, वे अलग और विशिष्ट हैं। भले ही बाकी दुनिया अज्ञानता के कारण यह भेद न करे, लेकिन परमेश्वर करता है। और यह देखते हुए कि हम भविष्यवाणियों के समय में कहाँ हैं, हमारे लिए इसे समझना और स्वीकार का बुद्धिमानी हो सकती है, क्योंकि वह समय निकट है जब लेवियों को एक बार फिर यहूदी धर्म में एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। उत्पत्ति 49वां का 8-12 पर है। पहली बात जो हम देखते हैं वह यह है कि याकूब के पास यहूदा के बड़े भाइयों की तुलना में यहूदा से कहने के लिए बहुत कुछ है। कई बेहतरीन टिप्पणियां अब हमें बताती हैं कि यहां यहूदा को ज्येष्ठ पुत्र का आशीर्वाद मिलता है। खैर, यह केवल आंशिक रूप से सच है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यहूदा को वास्तव में जो मिलता है वह ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाले आशीर्वाद का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के आशीर्वाद के दो प्राथमिक तत्व हैं। एक, किसी भी अन्य उत्तराधिकारी की तुलना में जनजातीय धन की दोगुनी मात्रा प्राप्त करना, और दो, गोत्र पर नेतृत्व और अधिकार की आधिकारिक धारणा। हम देखते हैं कि यहूदा को जो विरासत में मिला वह केवल दूसरा भाग था, जनजातीय अधिकार और नेतृत्व। उत्पत्ति 48 में वापस यूसुफ को ज्येष्ठ पुत्र के आशीर्वाद का दूसरा भाग, दोहरा भाग दिया गया था, और यह यूसुफ के दो बेटों को याकूब के सभी बेटों के बराबर बनाने के रूप में था। इसलिए यूसुफ को अपने दो बेटों के माध्यम से इसराइल के सभी हिस्से का 12वां हिस्सा मिला। यहूदा सिंह है, राजसी स्थिति का एक प्राचीन प्रतीक। यहूदा इसराइल का नया नेता है, और अपने नाम के अनुरूप यहूदा, जिसका अर्थ है प्रशंसा, अपने भाइयों की प्रशंसा प्राप्त करेगा, और अंततः पूरी दुनिया, क्योंकि उसी में से इसराइल के परमेश्वर के अभिषिक्त राजा और मसीहा निकलेंगे। दाऊद का शाही वंश यहूदा से आएगा, और इसराइल पर शासन करने का अधिकार यहूदा के गोत्र के पास रहेगा, जब तक कि अंततः शिलोह नहीं आ जाता। अब पद 10 पर एक नजर डालें। यह इस अध्याय में एक और विवादास्पद आयत है। कुछ बाइबलें मेरी तरह शिलोह शब्द के स्थान पर आज्ञाकारिता का अधिकार किसके पास है शब्दों का उपयोग करती है। आइए इस पर एक नजर डालें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं तो अत्यंत रोचक अवश्य है। सबसे पहले, शिलोह शब्द हमारे पास मौजूद सबसे पुरानी पांडुलिपियों में दिखाई देता है, और सेप्टुआजेंट में, जो ईसा से 250 साल पहले बनाया गया पुराना नियम का ग्रीक अनुवाद था। इसलिए शिलोह शब्द हर चीज से स्पष्ट रूप से मूल पाठ का हिस्सा है। बाद में पुराना नियम में हम देखेंगे कि कनान में शिलोह नामक एक शहर है, और यहीं पर जंगल का तंबू कई सालों तक आराम करेगा। दिलचस्प बात यह है कि शिलोह एप्रैम के क्षेत्र में होगा। यह वास्तव में पहला है। पवित्र भूमि का पवित्र शहर है, जबकि हम सभी इस संबंध में यरूशलेम के बारे में सोचते हैं,
वास्तव में शीलोह पहले था और बाद में सबसे पवित्र शहर होने का सम्मान यरूशलेम को हस्तांतरित कर दिया गया। लेकिन फिर भी शीलोह आने वाली शताब्दियों तक इसराइल में एक पवित्र शहर बना रहा, यरूशलेम के बाद दूसरे स्थान पर। कुछ विद्वानों का मानना है कि शीलोह का यह शहर वही है जिसका इस पद में उल्लेख किया जा रहा है, हालांकि निश्चित रूप से यह याकूब के आशीर्वाद के समय अस्तित्व में नहीं था। लेकिन अगर हम याकूब के आशीर्वाद में शीलोह का अर्थ भविष्य के शहर का नाम मानते हैं तो यह पद बहुत अधिक समझ में नहीं आता है। निश्चित रूप से राजदंड यानी शासन करने का अधिकार शीलोह शहर की स्थापना के समय यहूदा से अलग नहीं हुआ था, न ही यहूदा के नेतृत्व में गिरावट आई थी जैसा कि यहां भविष्यवाणी की गई है। इसलिए हमें इसका अर्थ शहर नहीं लेना चाहिए।
अगली लोकप्रिय व्याख्या यह है कि शीलोह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है जिसके लिए आज्ञाकारिता आवश्यक है, और यही वह है जो हम अधिकांश बाइबल संस्करणों में पाते हैं। जबकि इसका निश्चित रूप से एक मसीहा को संदर्भित करने का निहितार्थ है, इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए वास्तव में यह मान लेना पड्डीडीएचता है कि शीलोह शब्द में से एक अक्षर हमें गलत तरीके से सौंपा गया था, यानी इब्रानी में गलत वर्तनी थी। इब्रानी अक्षर शीन को देखा होना चाहिए था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा था, और भले ही यह हमें शीलोह के बारे में एक अच्छा उत्तर देता प्रतीत हो, हमें ऐसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो शास्त्र पर भरोसा नहीं करती कि वह क्या है, बिना इसे संशोधित किए कि हमें एक ऐसा उत्तर प्राप्त करने में मदद मिले जो हमारे अनुकूल हो। अंतिम और सबसे उचित व्याख्या यह है कि शीलोह मसीहा का दूसरा नाम है। दूसरे शब्दों में शीलोह एक उचित संज्ञा है, इस मामले में एक नाम। विडंबना यह है कि पिछली व्याख्या आधुनिक समय के ईसाइयों द्वारा इस आयत की मसीहाई प्रकृति को साबित करने का एक प्रयास है, जिन्होंने मूल इब्रानी शब्द शीलोह को ऐसा कोई शाब्दिक अर्थ नहीं माना जिसे वे खोज सकें, इसलिए उन्होंने एक बना लिया।
फिर भी अस्तित्व में सबसे प्राचीन इब्रानी टिप्पणी, जिसे बेरेशित रब्बा कहा जाता है, से शुरू करते हुए बहुत पहले के समय के अधिकांश इब्रानी संत और विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि शीलोह पूरी तरह से मसीहाई प्रकृति का है। यह मसीहा शीलोह के बारे में बात करता है। इसलिए अंत में अगर ईसाइयों ने पिछले 1900 वर्षों से यहूदियों के प्रति इतनी दुश्मनी नहीं की होती तो उनके पास इस विश्वास के लिए बहुत शुरुआती स्रोत हो सकते थे कि यह शीलोह नासरत के आने वाले यीशुआ के बारे में बात कर रहा था। इसके बजाय उन्हें कुछ अर्थों को बदलना पड़ा, जो हमारे लिए शर्म की बात है, जो अंततः उसी परिणाम पर समाप्त हुआ।
तो यही उत्पत्ति 49 में शुरू करते हुए हमने भविष्यवाणी की है कि मसीहा इब्रानियों, इसराइल राष्ट्र, यहूदा के गोत्र दाऊद के परिवार से आएगा। अब हमारे पास जो दूरदृष्टि है उसके आधार पर, ये जानते हुए कि मसीहा कौन है, उत्पत्ति 49:10 को पूरी हुई भविष्यवाणी के रूप में पढ़ना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा, है ना? जब तक यहूदा से राजदंड न छूटेगा और न शासक की लाठी उसके पैरों के बीच से, जब तक कि वह यीशु मसीह को न सौंप दी जाए। और बेशक वह शासकत्व वास्तव में यीशु को सौंप दिया गया है। यहूदा के बारे में एक और बात और हम आगे बढ़ेंगे। धार्मिक यहूदियों के सामने आज एक बड़ी समस्या है। वे लगातार यह दावा करते रहते हैं कि मसीहा, या कम से कम मसीहाओं में से एक, क्योंकि बहुत से यहूदी मानते हैं कि दो होंगे, यहूदा के गोत्र से होगा और अधिक सटीक रूप से दाऊद के यहूदी शाही परिवार से होगा। लेकिन बेशक वे यह स्वीकार नहीं करते कि यीशु, जिसने खुद को लगभग 30 ईस्वी में प्रकट किया, वह मसीहा है। इसलिए समस्या यह है कि जब वह अपेक्षित दिन आएगा और एक मसीहा खुद को इस रूप में प्रकट करेगा तो यहूदी कैसे होंगे? यह साबित करने में सक्षम है कि यह वास्तव में वही है जिस तरह से वे ऐसी चीजों को साबित करना पसंद करते हैं वंशावली के द्वारा, क्योंकि 70 ईस्वी में यरूशलेम में अभिलेखों का घर और हर दस्तावेज जो हर यहूदी परिवार की वंशावली को साबित करता था नष्ट कर दिया गया था। लगभग 1900 साल के निर्वासन और फैलाव के साथ 1948 में पुनर्जन्म वाले इसराइल में लौटने से पहले आज जीवित किसी भी व्यक्ति के लिए यहूदी होने का दावा करने का कोई तरीका नहीं है इसे वंशावली से साबित करने के लिए। यीशु इसे साबित करने में सक्षम थे और उनकी वंशावली पर आज तक यहूदियों द्वारा कभी विवाद नहीं किया गया है। आज भी अतिरूढ़िवादी यहूदी आसानी से स्वीकार करते हैं कि नासरत के यीशुआ अस्तित्व में थे, कि वे यहूदा के गोत्र से थे और वे दाऊद की वंशावली से थे। फिर भी इतने सारे इसराइलियों पर अंधेपन के कारण वे यीशु के मसीहा होने की वास्तविकता को नहीं देख सकते हैं। या यह निराशाजनक है कि वे अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कभी भी यह साबित नहीं कर सकते हैं कि जिसे वे मसीहा समझते हैं वह वास्तव में मसीहा है। अगले सप्ताह हम शेष गोत्र की आशीषों पर नजर डालेंगे जिसकी शुरुआत याकूब की पहली पत्नी लिया से उत्पन्न अंतिम दो बच्चों से होगी।